नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार देश में किसानों के कल्याण और उनकी आय में वृद्धि को प्राथमिकता देने के साथ ही कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। असम के गुवाहाटी में एक जनसभा में देश के 9 करोड़ 32 लाख से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त जारी करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत देश के साथ दुनिया की ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने लगभग 19,680 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसी क्रम में प्रधानमंत्री आज सिलचर में 23,550 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश अनुसार पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के अंतर्गत पहली पूरक मतदाता सूची अगले सप्ताह प्रकाशित होने की संभावना है। चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया कि प्रारंभिक सूची में 60 लाख से अधिक नामों की समीक्षा की गई थी, हालांकि लगभग 15 लाख नामों का निपटारा हो चुका है। इस बीच लगभग 35 लाख मतदाताओं के दस्तावेजों का सत्यापन तेजी से जारी है और अधिकारियों का कहना है कि उनके मामलों का निपटारा भी शीघ्र ही कर लिया जाएगा। भारत ने पश्चिम एशिया में वर्तमान स्थिति के बीच ईरान से ऊर्जा और वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति के महत्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजिश्कियन से बातचीत की। वहीं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि देश पेट्रोल और डीजल के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतेह अली ने भारतीय जहाजों को जल्द ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति मिलने के संकेत दिए हैं। श्री फतेह अली ने नई दिल्ली में कहा कि भारत की ईरान से दोस्ती है। उन्होंने कहा कि ईरान का मानना है कि क्षेत्र में दोनों देशों के साझा हित हैं।
हमारा मानना है कि ईरान और भारत मित्र हैं, हमारे बीच कई समानताएं हैं और भारत में राजदूत के रूप में मैंने आपसे कहा था कि युद्ध के बाद इस स्थिति में भारत सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में हमारी मदद की है।
सरकार ने कहा है कि देश हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और आर्थिक हितों को प्रभावित करने वाली सभी घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रहा है। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि सरकार हिंद महासागर में देश के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के दौरान ओमान के सोहार में हुए हमले में 2 भारतीय नागरिकों की मौत पर विदेश मंत्रालय ने शोक व्यक्त किया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी कर घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की। भारत और दक्षिण कोरिया ने व्यापार को और मजबूत करने, भारत से विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देने तथा व्यवसायों के लिए नए अवसर खोजने पर चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दक्षिण कोरिया के व्यापार मंत्री यो व्हान कू के साथ बैठक में भारत कोरिया आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने निवेश बढ़ाने, आपूर्ति श्रृंखला सहयोग का विस्तार करने, दोनों पक्षों ने निवेश बढ़ाने, अधिक पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार संबंध की दिशा में काम करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR और इसके आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन की सुरक्षा और प्रवर्तन संबंधी उपसमिति ने कल अपनी 24वीं बैठक आयोजित की। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि बैठक में संबंधित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के राज्य सरकारों GNCTD और पंजाब सरकार द्वारा क्षेत्र में प्रवर्तन कार्रवाइयों की स्थिति की व्यापक समीक्षा की गई। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति कांगड़ा जिले के धर्मशाला में स्थित हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। श्री राधाकृष्णन धर्मशाला स्थित युद्ध स्मारक पर भी जाएंगे, जहां वे श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और खेलों में महिला हॉकी में भारत ने हैदराबाद में इटली को 1-0 से हराकर FIH हॉकी विश्व कप के क्वालिफायर के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत के लिए मनीषा चौहान ने मैच के 40वें मिनट में एकमात्र गोल किया। सलीमा टेटे की अगुवाई में भारतीय टीम का सामना आज 7:30 बजे इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।